शांति। भारतवर्ष में बहुत सारे बाबा के सेंटर्स खुले और बहुत सारे बाबा के वत्स मधुबन आना शुरू किया। अभी तक जो भी विघ्न थे, सामाजिक तौर से या फिर दूसरे लोगों से जो आता था, वो समाप्त हो गया था। लेकिन अभी एक नई परीक्षा बाबा के सामने आई। तो बात सन 1956 की है, जब बाबा लगभग 78 79 इयर्स के हुए, तब अचानक कोई बाबा बीमार पड़ गए। और यहाँ माउंट आबू के जो डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, आपको बॉम्बे जाना होगा, वहां के डॉक्टर्स आपको अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इस उम्र में ऑपरेशन करना थोड़ा सा रिस्की है। तो ये बात सुन करके ब्रह्मावत्स भाई बहने बहुत चिंतित हो गए कि पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सी परीक्षा अभी हमारे सामने आने वाला है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखते एकदम निश्चिंत, कोई भी चिंता की लकीर उनके माथे पर नहीं होता था। जैसे बेफिक्र बादशाह होकर के सब चीजें शिव बाबा के ऊपर छोड़ के रखा है, ऐसा वो रहते थे। तो जब कोई वत्स बाबा के कमरे में जाते, तो पर्दा थोड़ा हटा करके बाबा को देखते, बाबा लेटे हुए हैं, तो बाबा बाबा बहुत प्यार से, मधुर नजरों से उनको निहाल करते थे। यदि कोई भाई बहने उनकी शैया के पास जाकर खड़े हो जाते थे, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं अगर नजर आती, तो बाबा पहले जैसी मधुर आवाज में कहते, हाँ मैं तो ठीक हूँ, ये तो आप जानते ही हो कि ये पुराना शरीर है, पुरानी चीज को तो कई चट्टियां लगाकर ही चलाना होता है। बाकी बाबा को तो कुछ भी नहीं है, फिक्र से फारिग हो जाओ बच्चों। तो बाबा निश्चिंत कर देते थे बच्चों को। जब बाबा के ये शब्द कह रहे होते हैं, तब बाबा के चेहरे पर ऐसा ही नूर होता और उनकी खुशी में तथा ताजगी में कोई भी कमी ना महसूस होती। भले ही बाबा रात भर उस शारीरिक तकलीफ के कारण से जागते रहे हो, तभी बाबा के चेहरे पर थकावट का कोई भी चिन्ह नहीं होता था। बाबा की स्थिति सूक्ष्म रूप में सब बाबा के बच्चों को यही प्रेरणा दे रही थी कि माया के अतिरिक्त काया की ये जो व्याधि है, ये परीक्षा के रूप से हमारे सामने आया हुआ है, और इसको हम अच्छी तरह सामना करें, देह से न्यारा होकर आत्मिक स्थिति में रहकर तथा परमपिता परमात्मा के स्मृति में टिके रहने का अभ्यास ऐसा परिपक्व होना चाहिए कि वो रंच मात्र भी हमारी स्थिति को बिगाड़ ना पाए। चाहे वो बाबा चाहे दादियां, जब भी उनको बीमारियां हुई तो उनके चेहरे पर वो दिखाई नहीं देता था। तो बाबा ने सबसे पहले ये पाठ सभी को पक्का कराया, भले शारीरिक रूप से कुछ कुछ भी तकलीफ हो रहा हो, कहीं भी दर्द हो रहा हो, लेकिन चेहरे पर वो नजर नहीं आना चाहिए। तो वो पेन महसूस कैसे ना करे कि वो आत्मिक स्थिति, जितना हम आत्मिक स्थिति में रह करके बाबा को याद करते रहेंगे, सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ रहेंगे, वो दर्द हमें महसूस नहीं होता। दर्द होता चिल्लाते तो दर्द कम तो नहीं होता ना। तो बाबा ने हमें ये करके दिखाया, करके सिखाया कि आत्मिक स्थिति में स्थित हो करके वो जैसे दर्द है ही नहीं, शरीर के भान से न्यारे होकर के कर्म भोग को उन्होंने चुक्त किया। उधर बंबई में नए हॉस्पिटल हॉस्पिटल में बाबा के लिए सब व्यवस्था की गई थी। वहां का जो मुख्य डॉक्टर है उसको ही पिताश्री जी का ऑपरेशन करना था। इतनी बड़ी आयु में इतना कष्ट होते हुए भी बाबा के मुख से कोई भी आवाज नहीं निकलता था। उनके चेहरे पर व्याधि के द्वारा जो दर्द कुछ भी उसका चिन्ह नहीं दिखाई देता था। पहली ही भेंट में जब बाबा ने डॉक्टर को डॉक्टर ना कहकर गुड मॉर्निंग बच्चे इस प्रकार के शब्दों से संबोधित किया तो डॉक्टर के शरीर में एक सिहरन सी जैसे झंझनाट होता है ना ऐसे हो उठी। उसके जीवन में यह पहला ही पेशेंट था जिसने अपनी तकलीफ बताने के बजाय मुस्कुराते हुए डॉक्टर को गुड मॉर्निंग कहा और डॉक्टर को बच्चे कहकर बुलाया। इस प्रकार उस पहली सी मुलाकात में डॉक्टर साहब के मन में ये तो निश्चय हुआ कि ये कोई बड़ी हस्ती है। उसे अवश्य ही लगा कि इस दुनिया के बाजार में सौदा सौदेबाजी तो सब करते हैं, लेकिन ये बाबा तो कोई ऐसे अलौकिक बाबा है कि जिनका हर कार्यकलाप निस्वार्थ स्नेह से भरा हुआ है। जब बाबा का ऑपरेशन होना था तब डॉक्टर ने यह कह दिया था कि ऑपरेशन के दौरान बाबा को खून देना पड़ेगा, खून के बोतलें चढ़ानी पड़ेगी। परंतु बाबा को जब ये मालूम हुआ तो बाबा ने इसके लिए एकदम मना कर दिया, क्योंकि बाबा अब जो शरीर जो बाबा यूज कर रहे थे वो शिव बाबा के लिए अर्पित था, ये शिव बाबा का शरीर था और कोई भी देह अभिमानी व्यक्ति का रक्त उसमें डालना नहीं चाहते थे। उन्हीं दिनों में संतरी दादी भी ब्रह्मा बाबा के साथ बॉम्बे चल गए थे, हॉस्पिटल में रहते थे, तो संतरी दादी संदेश लेकर के गए वतन में। शिव बाबा को बताया कि ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खून का बोतल देना होगा, तो शिव बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने संदेश भेजा कि मेरे साकार रथ को कहना कि मैं स्वयं ही उस रक्त का शुद्धिकरण करूंगा, इसलिए वे इस बात को स्वीकार कर ले, रक्त लेने के लिए स्वीकार कर ले। शिव बाबा ने जवाबदारी ले ली थी कि मैं खून को साफ कर दूंगा। तब साकार बाबा ने ये बात मान ली। बाबा का जब ऑपरेशन हो रहा था तब सारे ऑपरेशन के दौरान संतरी दादी एक अलग कमरे में बैठी हुई ऑपरेशन देख रही थी और शिव बाबा उस रक्त का किस रीति से शुद्धिकरण कर रहे हैं वो दृश्य भी भली भांति दादी देख रहे थे। इसी प्रकार दादी पुष्प शांता भी सेंटर पे बैठ करके वो भी वतन में गए और ऑपरेशन के संबंधित सारा दृश्य उन्होंने वो भी देख रहे थे। और साथ साथ कानपुर में दादी सती सती दादी भी वहां ऑपरेशन का वो दृश्य वतन में देख रहे थे। ऐसे अनेक संदेश पुत्रियां अलग अलग जगह पर मधुबन में भी बैठ करके सारा ऑपरेशन का दृश्य देखा और बाबा को सारा संदेश देते रहे। और फिर बाबा का ऑपरेशन बहुत सुचारू रूप से हो गया और फिर ठीक होने लगे। तो हॉस्पिटल में भी ईश्वरीय संदेश देने की जो सेवा है वो बाबा चालू रखा था। डॉक्टर्स नर्सेस को भी बच्ची बच्ची कह करके बोलते थे और हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स भी आते थे बाबा से मिलने के लिए इच्छुक होते थे, बाबा से ज्ञान सुनते थे, दृष्टि लेते थे। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सेवा ये हुई जो एंटी ओम मंडली वाले थे जो अभी भारत में आए हुए थे और कुछ लोग बॉम्बे में भी थे, वो लोग भी आकर के बाबा से मिलने आए और वो भी बाबा से ज्ञान सुना। और क्योंकि अभी तक उनके मन में बाबा के प्रति जो भी मनमुटाव जो भी कुछ कड़वाहट थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ और इस स्थिति में बाबा को जरूर देखने के लिए आना ही था उनको। तो जब वो आए आंटी ओम मंडली वाले या फिर जो विरोध कर रहे थे वो भी आए बाबा से मिलने और बाबा उनकी भी अच्छी तरह सेवा की। और साथ साथ जब ही हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहे थे बाबा, तो बच्चों को बोल करके दो प्रकार के किताब बाबा ने अर्जेंट में बहुत जल्दी जल्दी छपवाया था, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, अविनाशी ज्ञान रत्न एक हिंदी का किताब और इम्परिशेबल ट्रेजर्स ऑफ गॉडली नॉलेज, ये दो किताब बाबा ने छपवाया ताकि फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सेवा वो कर पाए। तो इस लिटरेचर के द्वारा भी बाबा ने सभी की सेवाएं की और धीरे धीरे ठीक हो गए और वापस मधुबन यहाँ माउंट आबू में पधारे बाबा। और फिर बाद में एक और परीक्षा आई, बाबा जब वापस आए तो राजस्थान गवर्नमेंट के तरफ से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से एक नोटिस मिला कि कोटा हाउस और धौलपुर हाउस, उस टाइम पे एक्चुअली जो ब्रिज कोटी में 2 साल रहे, फिर उसके बाद जो हेडक्वार्टर्स है वो कोटा हाउस और ढोलपुर हाउस में शिफ्ट हुआ था। सो 1956 में अभी कोटा हाउस और ढोलपुर हाउस में रहते थे। तो अभी गवर्नमेंट से नोटिस आया उसको खाली करना है, क्योंकि बात तो ये थी जब लिया गया था अभी किराए पर लिया था, जब किराए पर लिया था तो गुजरात गवर्नमेंट के अंडर था और अभी माउंट आबू राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर आ गया। तो राजस्थान गवर्नमेंट वाले सोचते थे ये जो भवन है कोटा हाउस और ढोलपुर हाउस, इन दोनों को सर्किट हाउस के रूप में परिवर्तन करना है, तो इसलिए ये दोनों भवन चाहिए। तो काफी बाबा ने और बाबा के बच्चों ने काफी मेहनत की ताकि ये दोनों भवन हमारे पास रहे, लेकिन फिर कुछ कारणवश हमारे पास नहीं आया। तो इसलिए फिर कल्याण ये बात भी कल्याणकारी समझ करके फिर नया स्थान ढूंढने के लिए कोशिश किया। तो अब दूसरा स्थान लेने के लिए जब ढूंढ रहे थे तो वो कोटा हाउस के नजदीक ही एक बहुत सुंदर जो जगह देखा वो था पोखरान हाउस, जो अभी वर्तमान समय पांडव भवन है वो पोखरान हाउस के रूप में था वहां। लेकिन ये भवन इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन ये इसमें क्या एक खूबी ये थी कि आसपास की जो जगह थी वो खाली मैदान था, भले घर बहुत छोटा सा था भवन छोटा सा था लेकिन आसपास बहुत खुला मैदान था। तो बाबा ने कहा ठीक है ये जगह ले लेते हैं, तो ताकि फिर वहां जो खाली जगह है फिर उन जगहों पर फिर भवन निर्माण कर सकते हैं। तो जब बाबा के घर यहाँ ये पोखरान हाउस पहले किराए पर लिया, फिर धीरे धीरे फिर उसको खरीद लिया गया। फिर जब भाई बहने आना शुरू किया तो बाबा ने भवन निर्माण करना शुरू किया। वहां सबसे पहले जो ब्रह्मवत्स आते थे उनके लिए मकान कमरा बनाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे एक हॉल भी बनाया जो अभी हिस्ट्री हॉल है। तो वो हिस्ट्री हॉल उस टाइम पे बाबा ने बनवाया और फिर उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर बनाया कि इस लक्ष्य से कि जो भी टीचर्स है उनकी ट्रेनिंग हो ताकि वो बच्चे आकर के यहाँ ट्रेनिंग करें। और कुछ एक ऐसे भी हॉल छोटे छोटे हॉल्स भी बनाए ताकि फिर वहाँ बैठ करके ज्ञान चर्चा भी करे, तो रहने के लिए और फिर ज्ञान चर्चा के लिए भी अलग अलग उन्होंने कमरा बनाया। तो बाबा जब भी बच्चे आते थे बाबा बहुत उमंग उत्साह से उन बच्चों को उन भवनों को दिखाने के लिए लेके जाते थे, यहाँ हमारे बच्चे सुख से रहेंगे, यहाँ वे ईश्वरीय विद्या पढ़ेंगे। चीजें ऐसी बनाई जाती थी जो कम खर्चा बाला नशीन होगी, यहाँ प्रबंध ऐसा होगा कि बच्चे जब दुनिया के धंधों से और माया के तूफानों से थक कर आएंगे तो वे शिव बाबा के इस घर में ऐसा सुखपूर्ण विश्राम पाएंगे कि उन्हें चीची दुनिया तो भूली जाए। तो बाबा का लक्ष्य इतना ऊंचा था, तो भले सुविधाएं बहुत साधारण होती थी, लेकिन बाबा को ये था कि बच्चे आकर के यहाँ तन और मन की जो थकावट है वो सब उनका मिट जाए। तो बाबा निर्माण स्थल पर स्वयं जाया करते और आने वाले वत्सों की याद में वो जिस प्रकार निर्देश दिया करते वो देखने ही देखने जैसा होता था। बाबा उन्हें कहते, बच्चे बाबा आपके लिए जगह बनवा रहे हैं, आओ उसे देखकर तो आओ। इतना कहते ही वो उठ खड़े होते और अपने अंगुली वत्सों के हाथ में दे देते और कहते, चलो बच्चे बाबा स्वयं आपको दिखला के लाते हैं। तो ऐसे बहुत उमंग उत्साह से एक-एक भवन बाबा ने बहुत प्यार से बनाया। तो इसीलिए अभी भी जब भी पांडव भवन जाते हैं तो उसका वाइब्रेशन ये बहुत ही अलग है। बाबा का प्यार एक एक ईंट में वो समाया हुआ महसूस हम करते हैं। फिर उस कॉम्प्लेक्स को बाबा ने पांडव भवन नाम रखा। इस भवन को बनाने के कार्य में जो भी मिस्त्री और मजदूर लोग लगे हुए थे वे भी बाबा के सुमधुर और पितृवत वात्सल्य को बहुत वात्सल्य से बहुत प्रभावित होते थे। बाबा उन्हें बच्चे बच्चे कहकर बुलाते थे। वो माली को भी माली बच्चे कह करके बुलाते थे। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को बाबा बच्चे बच्चे कह करके बुलाते थे। और भवनों के साथ साथ बाबा बहुत सुंदर बगीचा भी डेवलप किया। बाबा को फूलों का भी बहुत शौक था। बाबा ने पांडव भवन के निर्माण में जहां अन्य आवश्यकताओं को स्थान दिया, वहां इसके एक बड़े हिस्से में फूलों का एक बगीचा भी बनवाया तथा उसमें कई प्रकार के फल भी लगवाए। बाबा कहते, इस बगीचे में मैं सभी प्रकार के फूल और फल लगवाऊंगा। सेवा केंद्र से जो बच्चे यहाँ आएंगे उन्हें मैं अपने हाथों से ये फल खिलाऊंगा। इस बगीचे में अनेक प्रकार के जो फूल होंगे वे जिस आध्यात्मिक रहस्य के परिचायक होंगे उसका बोध भी बच्चों को कराऊंगा। मेरे ये ज्ञान वत्स भी मानव रूप में फूल ही तो है और शिव बाबा के रूहानी गुलदस्ते हैं और शिव बाबा माली हैं जो इन सभी को देखकर हर्षित होते हैं। इस ज्ञान के बगीचे में भी कोई तो अभी कली बना हुआ है और कोई फूल है। इसमें कोई तो सूर्यमुखी है जिसका मन सदा ज्ञान सूर्य परमात्मा की ओर है और कोई रूहे गुलाब है जिसकी रूह में दिव्य गुणों की सुगंध है। कोई मोतिया या चमेली की तरह खुशबूदार और पवित्र है। इसके अतिरिक्त कोई तो अब फल बन चुका है जिसमें कि ज्ञान रस भर गया है, परिपक्व हो गया है और दूसरों की सेवा में लगा हुआ है। इस प्रकार ये बगीचा भी सेवा केंद्रों से आने वाले वत्सों को ज्ञान देने का के लिए निमित्त बन गया। और बाबा ने इस बगीचे में अंगूरों की बेल भी लगाई थी। अभी भी देखते हैं कुटिया के बाहर वहां अंगूर के बेल हैं। या इतनी नीच अंगूर इतना नीचा था कि कोई भी थोड़ा व्यक्ति अपने एड़ी उठा करके ऊपर चढ़ते तो वो मुंह में वो अंगूर आ जाता था, इतना नीचा था। हर वर्ष जब अंगूरों के गुच्छे उतारे जाते तो बाबा इस अल्लाह के बगीचे के अंगूरों को बड़े चाव से हर एक सेवा केंद्र पर बेचने का यत्न किया करते थे। अंगूर तो भारत के हर शहरों में मिलती और वो भी मीठे अंगूर सभी जगह पर मिलते, लेकिन इन अंगूरों की विशेषता ही कुछ अलग थी क्योंकि इसमें ईश्वरीय प्यार भरा हुआ था। बाबा इन्हें पार्सल करके नहीं बेचते थे बल्कि उसको एक भाई को एक टोकरी भर करके भाई को देते और भाई के हाथ में एक लेटर भी देते थे, तो ले जा करके उस सेंटर पे देते और सेंटर के आसपास जो भी ब्रह्मा वत्स है उस सेंटर में आने वाले या सेंटर के आसपास जो भी सब सेंटर्स थे, तो वहां के भाई बहनों को ये अंगूर मिलता। बाबा उस लेटर पे में लिखते इस बच्ची को मिले, इस बच्चे को मिले, नाम सहित सभी को बाबा बहुत प्यार से अंगूर बेचते थे। तो फिर ये प्रैक्टिकली बाबा का प्यार हर एक बच्चे के पास पहुंचता था। ना केवल ज्ञान बाबा देते थे, ना केवल ज्ञान से सींचते थे, लेकिन स्थूल रीति से भी बाबा, हर रीति से बाबा प्यार लुटाते लुटाते थे हर बच्चे के ऊपर। तो इस बगीचे में बाबा ने एक कुटिया भी बनवाई, देखने में बिल्कुल सादी और प्राचीन कला की परिचायक, जो अभी कुटिया देखते हैं वहां, तो ऐसा नहीं था। जब बाबा ने बनवाई थी तो वो एकदम कच्चा, जो वो ड्राई वाला जो घास होता है तो वो डाला हुआ था छत पर। तो परंतु इसमें बेटे बाबा के पास जब कोई अपने मन का हाल बताने जाते तो उसको लगता कि आज किसी ने मेरे आत्मन पर से सारा बोझ उठा दिया है और उसके बदले में मुझे हर्ष और हल्कापन दे दिया है। क्षण भर में उन्हें बड़ी से बड़ी समस्या का हल मिल जाता था। वे बाबा के निकट बैठकर ज्ञान के गहन रहस्यों तक पहुंच सकते थे और बाबा से शिक्षाएं भी प्राप्त करते थे। तो अभी भी जब भी हम कुटिया में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा वहां बैठे हुए हैं और हमारे साथ वो चिटचाट कर रहे हैं। कोई भी समस्या, कोई भी बाबा के बच्चे वहां कोई भी समस्या ले जाते हैं, बाबा को बताते, बाबा ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, तो ऐसा लगता है कि बाबा वहां वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बाबा दे रहे हैं। जैसे ही कुटिया से बाहर आते तो लगता है कि बाबा ने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दिया, सारा हल्का कर दिया। तो अभी भी सभी बाबा के बच्चे वहां इस बात को महसूस करते। अभी भी वो कुटिया नहीं है, केवल कुटिया नहीं है बाबा के बच्चों के लिए, वो एक लाइट हाउस है, एक सर्च लाइट है, जहां से हम अभी भी वो शक्ति, वो ताकत हम महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार पांडव ने सब सुख सुविधाएं सहज सुलभ कराया। फिर बाबा स्वयं तो सदा एक छोटे से पुराने कमरे में ही बने रहे। ये देखकर कहीं बाबा के बच्चे कहते, बाबा हम इस नए भवन की सुख सुविधा में रह रहे हैं, लेकिन आप तो पुराने कमरे में ही रहते हैं। बाबा आप भी नए मकान में आइए, एक बड़े से कमरे में आराम से रहिए। तब बाबा कहते, वत्सो शिव बाबा तो आते ही पुरानी दुनिया में और पुराने शरीर रूपी रथ में हैं। नए सतयुगी दुनिया तो वो आप बच्चों के लिए ही बनाते हैं। बाप तो आप बच्चों को वहां उस भवन में देख करके, नए मकान में देख करके बहुत खुश है। तो सब कुछ सुख सुविधाएं बाबा ने बच्चों को दी, लेकिन खुद एक छोटे से कमरे में, पुराने मकान में वो खुद रहे और फिर कुटिया में भी रहे, और बहुत त्याग तपस्या वाली जीवन बाबा ने अपनाया। बाबा कहते, मैं किन्हीं कर्म संन्यासियों की तरह थोड़ी हूँ जो गुरु आचार्य अपने स्वयं के लिए सब सुख सुविधाएं कराते हैं और सेवा पूजा अर्चना कराते हैं। वो मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं तो रूहानी सेवक हूँ। बच्चे सेवक का तो ऐसे ही कमरे में रहना ठीक बनता है। बाबा की ये बातें सुनकर सभी मुक होकर रह जाते। कितनी थी बाबा की त्याग और तपस्या की भावना और उनका लोक सेवा का संकल्प। तो अपने प्रति बाबा ने ज्यादा खर्च कराया ही नहीं, सब सुख सुविधाएं बच्चों के लिए दिया, लेकिन खुद त्याग तपस्या वाली जीवन बाबा ने जिया। उनका हाथ सदा देने की मुद्रा में रहता था और वे सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति बेपरवाह थे। वे इसी कमरे में ही तपस्या करते रहते थे, इसी स्थान पर ही वत्सों को योग दृष्टि एवं अनेक वरदान देते रहते थे। आज ये तपस्या का कमरा हो गया है, चाहे वो बाबा का कमरा है या बाबा का कुटिया है, वो दोनों तपस्या का कमरा हो गया है, क्योंकि उस त्याग तपस्या और सादगी के आदर्श बाबा ने यहाँ तपस्या की। तो जब भी उन कमरों में जाते हैं तो साकार बाबा की याद बहुत आता है, ना केवल याद आता है लेकिन बाबा को वहां महसूस करते हैं, ऐसे लगता है कि बाबा वहां अभी भी है, हमें अपने नजरों से निहाल कर रहे हैं, तो ऐसे हम महसूस करते हैं। और जनवरी मास में खास बाबा को बहुत हम याद करते हैं और महसूस भी करते हैं, बाबा हमारे साथ ही हैं, क्योंकि बाबा ने ये वायदा किया है कि बच्चे हम सब एक साथ जाएंगे। भले बाबा ने स्थूल शरीर त्याग किया है लेकिन सूक्ष्म रूप से बाबा हमारे साथ ही हैं, वो हर बाबा के बच्चे ये महसूस करते हैं। अब ये भवन सर्वशक्तिमान शिव बाबा, शक्ति सेना तथा राम राज्य स्थापित करने वाली पांडव सरकार का मुख्यालय बन गया। बाबा का जो ये स्थान है वो बाबा का मुख्यालय बन गया। तो ऐसे मधुबन की महिमा क्या कहे कि बाबा की कर्म भूमि, भगवान जिस धरा पर, जिस भूमि पर कर्म करके दिखाया, ऐसे भूमि का गायन बहुत ही महान है। तो ऐसे अलग अलग लोग बाबा के संग का अनुभव जो सुनाते हैं, तो चंद्रहास दादा, आप सभी को पता है चंद्रहास दादा एक आदि रतन थे, तो उन्होंने अपने अनुभव में बताते हैं। तो वो ये इन दिनों की बात है जब मैं मकान का काम भी देखता था और बाबा की वाणियों की टेप की कॉपियां भी बनाते थे, सभी सेंटर्स पर पार्सल भी करते थे, मल्टीटास्किंग चलता था उस टाइम पे, कंस्ट्रक्शन का भी देखते थे तो मशीन का भी, साउंड का भी देखते थे, सारा दिन इस भाग दौड़ में रहते थे। एक दिन बाबा ने बहुत अच्छी वाणी चलाई, उस दिन निर्मल शांता दादी अपने सेंटर पर जा रही थी, उसने बाबा को कहा, बाबा चंद्रहास भाई को कहो कि आज की वाणी की टेप मुझे कॉपी करके दे दे। बाबा ने मेरे को बुलाकर कहा, बच्चे आज की वाणी की टेप बच्ची को बनाकर दे देना। मैंने कहा आज तो बहुत काम है बाबा, मैं 2 दिन के बाद पोस्ट कर लूंगा, आज मैं नहीं बना सकता हूँ, मैं बाद में बना करके पोस्ट कर दूंगा। तो बाबा गंभीर होकर बोले, बच्चे तुम तो बड़े बुसुस्त हो, नींद करते हो, खाने के लिए फुर्सत है, बाकी वाणी की कॉपी निकालने के लिए फुर्सत नहीं है। तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा, तुम तो सुस्त हो। तो ये बात सुन करके दादा को बहुत बुरा लगा, मेरा दिल भर आया। तो दादा कहते हैं, बाबा सारा दिन इतना भागदौड़ करता हूँ, फिर आप सुस्त कहते हो, मुझे डांटते हो, दूसरे तो सिर्फ थोड़े सी सेवा कर लेते हैं फिर उनकी महिमा आप करते हो, लेकिन मैं तो इतना भागदौड़ करता हूँ फिर भी आप मुझे डांट लगा देते हो, जैसे छोटे बच्चे हैं ना। तो बाबा को जाकर के वैसे बोला। तो उस समय पता नहीं कैसे बचपने में आकर के ये कह करके बैठ गया। तो बाबा ने बहुत प्यार से दादा को बाकी पहनाया, फिर कहा, बच्चे ये मेरा डांट नहीं है, प्यार है, क्योंकि मेरे अपने बच्चे पर इज्जत है ना। तो दूसरों की तो महिमा कर उनको उमंग उत्साह में लाना पड़ता है, महिमा करना पड़ता है, लेकिन बाबा ने कहा, लेकिन आप तो मेरे बच्चे हो, ये तो मेरे इस डांट में भी प्यार समाया हुआ है। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा अपने बच्चों में कोई भी कमी देखना नहीं चाहता, इसलिए डांट प्यार से बच्चे को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहता है। ऐसे थे हमारे प्राणेश्वर बाबा, जिनके अपने बच्चों पर इतने हुज्जत तथा कल्याण की भावना रहती थी। ये भावना रहती थी मेरे बच्चे में कोई भी कमी ना रह जाए, वो सर्वगुण संपन्न बन जाए। डांट भी लगाते थे, बहुत अधिकार से लगाते थे। तो जब डांट सुनने के बाद फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं बाबा, डांट लगाइए, वो डांट में भी आपका प्यार समाया हुआ है। फिर प्यारे बाबा के अमूल्य तन की मालिश करने का भी भाग्य मिला हुआ था। मालिश के समय बाबा और मैं बहुत चिटचाट करते थे। चंद्रास दादा बाबा के मालिश मालिश करते थे दोपहर के समय। बाबा के इतना नजदीक रहकर हम देखते थे कि कैसे बाबा दिनों दिन उपराम होते, अव्यक्त अवस्था को धारण करते, कर्मातीत अवस्था के नजदीक आते जा रहे हैं। मालिश के समय कभी कभी तो ऐसे महसूस होता जैसे कि बाबा अपने तन में है ही नहीं। फिर अचानक तन में आकर कहते, बच्चे अब तक मालिश कर रहे हो? जैसे घूम करके जा जा करके सेवा करके वापस आए, फिर अभी तक मालिश कर रहे हो? जल्दी करो, बच्चों को पत्र लिखने हैं। फिर दादा हंस पड़ते और कहते, बाबा आप आश्चर्य रहिए ना, आश्चर्य होकर के आप अपनी सेवाएं करते रहिए। ये रथ तो आपने शिव बाबा को दे दिया है, कितना भाग्यशाली रथ है जो दो सर्वोत्तम सवारियां इस पर सवार रहती हैं। इस रथ की तो जितनी मालिश करे कम है। तो दादा भी इतने उमंग उत्साह से, इतने नशे से मालिश करते थे, ये रथ किसका है? इस रथ में दो महान हस्तियां हैं। तो इस नशे से मालिश करते थे। तो बाबा भी हंस पड़ते कि बच्चा बाप को ज्ञान दे रहा है। तो ऐसे रूरहान चिटचाट दोनों करते थे। तो ऐसे हल्के फुल्के होकर के बाबा ने सबको प्यार में बांध करके खुद भी संपूर्ण हो गए और दूसरों को भी संपूर्णता के राह पर ले चलने का मार्ग बाबा ने हम सभी को बताया हुआ है। तो खास 18 जनवरी तक हम बाबा को न केवल याद करें, ये जरूर हम महसूस करें, बाबा हर घड़ी, हर पल, हर क्षण हमारे साथ है। छत्र छाया बन करके हजारों भुजाओं सहित बाबा हमारा साथी है। ओम शांति।
अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आए घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। हो निराकार साकार होए, गूंजे मुख से शिववाणी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी।
निराकार को कर्मों से,
साकार कर दिखाया। शिव बाबा याद है क्या, याद से याद दिलाया।
कथने करने एक करे ये करके हमें सिखाया, जीवन जीने की कला को जी कर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता तुमसे हमने जाने, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी।
जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा, कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है, दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना।
मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना, प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। एक अलौकिक सुख पाए हम बन दे अभिमानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी।
आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना, बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना, वह खेलना खिलाना वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को विनम्र मूर्ति महान को, आया था जिस तन में भगवान ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को।
हर काम किया था हाथों से अभिमान तनिक ना छू पाया, वो जीवन मुक्त फरिश्ता था जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी।
वो दृश्य वो नजारा मुश्किल बहुत भुलाना, बच्चे बूढ़े नर नारी सब पे प्यार बरसाना, आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना, हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना, बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना।
वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे, यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छोलेंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे हम तुम्हें वतन में छोलेंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे हो जब तक सूरज चांद सितारे, हो जब तक सूरज चांद सितारे सागर में है पानी। हर दिल गाता रहेगा बाबा तेरी अमर कहानी।